मैं स्कूल में था तब मेरे को कोई भी चीज़ याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और मेरे को सीरियसली ये लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ। लेकिन एक स्टूडेंट को एक स्कूल में इसी तरह से नापा जाता है कि वो कितना ज़्यादा स्टडी करता है और फिर जो भी उसने याद करा वो कितना एक्यूरेसी के साथ उन सारी बातों को एक एग्ज़ाम में जाकर लिख पाता है। एक बार मैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में था और मेरी मम्मी मेरी हमारी जो पड़ोस वाली आंटी थी उनसे कुछ बात कर रही थी और उसी दिन मेरा रिजल्ट आया था। तो आंटी मम्मी से पूछती कि सौरभ की रैंक क्या आई है और मम्मी ने बोला कि सौरभ सेकंड आया है, लेकिन एक्चुअल में मेरी रैंक थी 23rd। और आई नो आप भी इन बातों से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो कि आप याद करना चाहते हो बहुत सारी चीज़ें, आप अपने दिमाग पर बहुत सारी चीज़ों को चिपकाते हो लेकिन फिर वो सारी चीज़ें जो चिपकी हुई थी वो धीरे धीरे उतरने लग जाती हैं और आप अपने एग्जाम्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आपके पेरेंट्स को आपकी इंटेलिजेंस के बारे में दूसरों से झूठ बोलना पड़ता है और अगर आप कोई बिजनेस बुक भी पढ़ते हो तब भी आप उन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई ही नहीं कर पाते बिकॉज बुक को बंद करने के बाद आपको कुछ याद ही नहीं रहता। इसलिए इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे आप किसी भी चीज़ को सिर्फ एक ही बार पढ़कर या फिर उसे एक ही बार सुनकर उसे हमेशा के लिए याद रख सकते हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरा नाम है सौरभ गांधी और मैं लोगों को मदद करता हूँ उन्हें उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचने में एक होलिस्टिक अप्रोच का यूज़ करके। और अगर आप मेरे से पर्सनली मेंटर होना चाहते हो या फिर मेरे प्रोग्राम्स को बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि आपको लर्न किस समय पर करना चाहिए। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जब उनका एग्जाम उनकी स्पीच या फिर उनकी कोई प्रेजेंटेशन आने वाली होती है तब वो एंड का जो ज़रा सा टाइम बचा हुआ होता है वो अपनी सारी प्रिपरेशन तभी करने की कोशिश करते हैं। इसे बोला जाता है क्रैमिंग। लेकिन रिसर्च बताती है कि ये टेक्निक हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है और जिस भी मटेरियल को हम याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो भी हम स्किल एक्वायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। जैसे अगर मैं इस फुल गाइड को बनाने से पहले कोई भी प्रिपरेशन ना करूं, मैं बिल्कुल भी रिसर्च ना करूं, मैं कुछ भी बोलता जाऊं और मैं पहले से प्रिपेयर ना करूं कि मैं अपनी किस स्टोरी को किस पॉइंट के साथ जोड़ने वाला हूं ताकि आपको वो पॉइंट हमेशा के लिए याद हो जाए, तो आप ये समझ जाओगे कि मैं प्रिपेयर नहीं हूं और मैं कुछ भी बोल के आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। आप थोड़ी सी वीडियो देखोगे और आप फिर छोड़कर चले जाओगे। इससे YouTube को ये सिग्नल मिलेगा कि इस वीडियो में दम नहीं है और वो मेरी रीच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने से रोक देगा और इससे सबका नुकसान होगा। मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ तो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। इसी वजह से प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और प्रिपरेशन के लिए आपको किसी भी नॉलेज को किसी भी स्किल को सेटल होने देने के लिए टाइम देना होता है। आप एकदम से ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि अगले वीक आपका पेपर है, अगले वीक प्रेजेंटेशन है या फिर आपको 3-4 दिन में ही कोई काम करना है और आप तभी से उसकी प्रिपरेशन चालू करो। नहीं, आपको रेपिटेशन की मदद से और स्पेसिंग की मदद से, आपको दोनों रेपिटेशन के बीच में, दोनों प्रैक्टिसेस के बीच में स्पेस भी देना होगा ताकि जो भी आपने लर्न करा है वो प्रोसेस हो पाए। और यही सेम चीज़ आपने खाने के साथ भी देखी होगी। अगर आप एक ही समय पर बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो तो आप उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते और इसी वजह से मैं फास्ट करना प्रेफर करता हूँ। जैसे अभी दोपहर के 12:30 बजे हैं और लास्ट मील जो मैंने कंज्यूम की थी वो थी कल शाम को 7 या 8 बजे और अभी तक मेरे को कोई भूख नहीं लगी। और जिस लेवल पर मेरी मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी अभी है, खाना खाने के बाद ये दोनों चीज़ें यहाँ से डिक्लाइन ही होंगी। बिकॉज जब भी हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, तब वो ऑटोमेटिकली एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता। कोई भी खाना जो होता है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी एनर्जी लगती है और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है एनर्जी में कन्वर्ट करने का, तब हमारी मेंटल क्लैरिटी नहीं होती, हमारे दिमाग तक उतने रिसोर्सेज ही नहीं पहुँच रहे होते कि जो हमें स्किल लर्न करनी है, फिर जो भी हमें पढ़ाई करनी है, हम उसको इफेक्टिवली लर्न कर पाएँ। लेकिन एक टाइम पर मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को कितना एक्सट्रीम तक खींच सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये देख रहा होता हूँ कि मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो मैंने सोचा कि शायद मैं 23 घंटे का फास्ट कर सकता हूँ हर दिन और बस एक घंटे के अंदर जो भी मेरी 2500 से 3000 कैलोरीज हैं उनको कंज्यूम कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना शुरू करा, उसी मोमेंट में मेरे को पता लग गया कि इतना खाना बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती है। जब भी मैं अपने बॉडी को 70-80% से ज़्यादा फुल कर रहा हूँ, जब भी मैं अपने पेट को इतना ज़्यादा फुल कर रहा हूँ, तब सारा फोकस बॉडी का डाइजेशन पर ही है और मेरे को नींद आ रही है, मैं आलस फील कर रहा हूँ उस समय पर। और जो मेरे को सेकंड बेस्ट ऑप्शन देखा वो यही था कि मैं उस बड़ी मील को 2 छोटी मील्स में डिवाइड कर दूं और उन दोनों मील्स के बीच में गैप हो ताकि डाइजेस्ट भी हो पाए वो मील्स और जब भी मैं वो मील खा रहा हूँ तब मेरे को उतना लेजीनेस फील नहीं हो रहा और बीच में सारी मेंटल क्लैरिटी है। यही सेम चीज़ आपने करनी है लर्निंग के साथ। अगर आप सोच रहे हो कि आप एक मैराथन लगाओगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही बारे में स्टडी करके अपने दिमाग का पार्ट बना लोगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपका दिमाग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही बारे में डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, आप अपनी बुक को साइड में रखोगे और अपना मोबाइल खोलकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाओगे। इससे बेहतर तरीका ये होता है, जैसे अगर आपको आज 6 घंटे स्टडी करना है तो उसके बजाय अगले 6 दिनों तक रोज़ आधा आधा घंटा उसी सेम मटेरियल को पढ़ो। और यही सेम तरीका आप अप्लाई कर सकते हो किसी स्किल को सीखने में भी। जैसे अगर आपको कार चलाना नहीं आता, तो आप अगर सोच रहे हो कि आप दिन में 10 घंटे कार चलाओगे और आपको कार चलाना जल्दी आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इससे बेहतर अप्रोच यही होगी कि आप दिन में 15-20 मिनट कार चलाओ और लंबे समय तक इस कार चलाने की स्किल को प्रैक्टिस करो। नाउ अगर हम ये बात करें कि दिन में वो कौन सा समय होता है जिस समय पर लर्निंग सबसे ज़्यादा ईजी होती है हमारे लिए, तो ये चीज़ हर एक इंसान के लिए वेरी कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए दो ऐसे समय होते हैं जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, और वो होते हैं अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट। और आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हो। स्टडीज़ भी यही बताती हैं कि या तो आप अपने मन को सुबह नई नॉलेज के साथ ट्रेन कर सकते हो, या फिर रात को सोने से बिल्कुल पहले। बट अगर आप लेट नाइट को सिर्फ इसी वजह से जाग रहे हो क्योंकि अगले दिन आपका एग्जाम है और आप क्रैमिंग का सहारा ले रहे हो, तो ये चीज़ आपकी लर्निंग को इम्प्रूव नहीं करेगी, बल्कि ये उसे वर्स बनाएगी। किसी भी चीज़ को परमानेंटली लर्न करने के लिए आपके पास चार मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली स्ट्रैटेजी होती है अटेंशन। जब भी आप किसी नई चीज़ को सीख रहे होते हो या फिर किसी नई लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हो, तब ये पूरा प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। आप पूरा एक्टिवली इंगेज होते हो उस चीज़ में। आप जब भी कोई नया शब्द बोलते हो, आप बहुत ध्यान के साथ बोलते हो। जब भी आप किसी नए शब्द को लिखते हो, तब आप उसके साथ भी बहुत ज़्यादा अटेंटिव और कॉन्शियस होते हो। लेकिन एक बार जब आपको वो नई लैंग्वेज समझ आ जाती है और आप उसके साथ फ्लुएंट हो जाते हो, तब ये पूरा रीडिंग का प्रोसेस आपके लिए ऑटोमेटिक बन जाता है। आपको फिर कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालना पड़ता इसके ऊपर। जैसे जब आप सड़क पर बहुत तेज गाड़ी चला रहे होते हो और आपके सामने कोई रोड साइन या फिर कोई बिलबोर्ड लगा हुआ होता है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता कि वहाँ पर लिखा क्या हुआ है, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है। अगर मैं स्क्रीन पर आधे सेकंड के लिए भी कोई वर्ड दिखाऊं, तब आप कोई एफर्ट नहीं डालोगे उसको रीड करने के लिए, आप ऑटोमेटिकली रीड कर पाओगे। और इस ऑटोमेटाइजेशन का पर्पस ही ये होता है कि आप जल्दी से जिस भी चीज़ पर नज़र डाल रहे हो, आपको वो समझ आ जाए कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ताकि आप उसके मीनिंग तक पहुँच पाओ और उसको फर्दर प्रोसेस कर पाओ। लेकिन जब भी आप अपनी रीडिंग को कुछ ज़्यादा ही ऑटोमेटिक बना देते हो, तब उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप किसी चीज़ को रीड करते हो, तब आपको ऐसा लगता तो है कि आपने कोई काम करा है, लेकिन आपको ना तो कोई चीज़ समझ आई होती है और ना ही आपको कोई चीज़ याद हुई होती है। और ये चीज़ आपके साथ भी हुई होगी कि जब आप किसी बुक को रीड कर रहे हो, आपने पूरा पेज रीड कर लिया है, लेकिन आप सडनली रियलाइज़ करते हो कि ना तो आपको कोई चीज़ समझ आई है और जो आपने चीज़ अभी अभी पढ़ी वो आपको याद भी नहीं है। ऐसा इसलिए ही होता है बिकॉज आप अपनी प्रॉपर अटेंशन पे नहीं कर रहे होते उस चीज़ पर, जिस वजह से अगर आपके दिन का एक टास्क है कि आपको इतने पेजेस या फिर इतने घंटे रीड करना है, तब उस टास्क पर टिक लगाना बहुत ईजी है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को रीड करोगे, आप जल्दी जल्दी पूरे पेज को स्कैन कर लोगे और आपको लगेगा कि आपने पूरा काम कर लिया है, लेकिन आपको कोई चीज़ ना तो याद हुई होगी और ना ही समझ आई होगी, क्योंकि आपकी अटेंशन डिवाइडेड थी चीज़ों में, आप उस पर प्रॉपर अटेंशन पे नहीं कर रहे थे। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी सेंटर ऑफ अटेंशन का पार्ट नहीं होती, आप उसे इवेंचुअली लूज कर देते हो। इस चीज़ को साइकोलॉजी में बोला जाता है इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस। और यही वजह है कि जो आई विटनेस टेस्टिमनी होती है, यानी जो चश्मदीद गवाह होते हैं, उनके बयान को कोर्ट में ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता। यानी एक कोर्ट आई विटनेस टेस्टिमनी को कंसिडर तो करता है कि ये भी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें अकाउंट में लेना चाहिए, बट उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, उसका उतना वजन नहीं होता वहाँ पे। और पूरे लर्निंग प्रोसेस में हम अटेंशन की वैल्यू को समझ सकते हैं मेमोरी के तीन टाइप्स को समझकर। मेमोरी के तीन टाइप्स होते हैं सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का मतलब होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम अपने सेंसेस के थ्रू अब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी जिस चीज़ को आप देख रहे हो, जिस चीज़ को आप सुन रहे हो और जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं वो भी। जैसे आपके रूम में फ़ैन की आवाज़ आ रही हो सकती है, एसी चल रहा हो सकता है, मे बी आपके बाथरूम में नल खुला हुआ है थोड़ा सा और उसमें से टप 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 वो आवाज़ आ रही है, मे बी आपके रूम के बाहर खड़ा होकर कोई बातें कर रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसेस गैदर कर रहे हैं। लेकिन सोचो अगर ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा के लिए याद रहे, तो आप पागल हो जाओगे। इसलिए हमारा दिमाग साथ के साथ ज़्यादातर सेंसरी इन्फॉर्मेशन को भुला देता है। लेकिन जिस चीज़ पर आप अटेंशन पे करते हो, वो इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसरी मेमोरी से निकलकर आपकी वर्किंग मेमोरी तक चले जाती है। और वर्किंग मेमोरी नाम से ही क्लियर है, यानी वो मेमोरी दैट यू आर स्टिल वर्किंग विद। अगर आप इस एपिसोड पर पूरी अटेंशन पे कर रहे हो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये अभी आपकी वर्किंग मेमोरी में होगी। यानी आप अभी भी कैलकुलेट कर रहे हो, अभी भी सोच विचार कर रहे हो इस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, और ये परमानेंट नहीं बनी है। आप स्टिल इस सारी इन्फॉर्मेशन को लूज कर सकते हो। नाउ इस चीज़ को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मेरे पास एक स्टिकी नोट है और ये स्टिकी नोट सिंबलाइज कर रहा है वर्किंग मेमोरी को। इसके पीछे थोड़ी सी ग्लू लगी हुई है और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे अपने हाथ पर चिपका सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ी देर तक यहाँ पर टिका रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो ईजिली अलग भी हो जाएगा। नाउ असली क्वेश्चन ये है कि हम अपनी वर्किंग मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनाएं, और ये बहुत सिंपल है। हम इसके साथ जोड़ सकते हैं इमोशन को, हम इसके साथ जोड़ सकते हैं मीनिंग को, और हम इसके ऊपर चिपका सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को। और ये सारी चीज़ें जब वर्किंग मेमोरी के ऊपर, वर्किंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर लग जाती है, तब वो इन्फॉर्मेशन परमानेंट बन जाती है। क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा हमारे से रीज़न मांगता है कि मैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को दिमाग में क्यों अलाउ करूं। तू इतनी सारी चीज़ें लर्न करना चाहता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैं इतना ज़्यादा टैक्सिंग टास्क क्यों करूं? तो उसको रीज़न देना पड़ता है, उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस जोड़ने पड़ते हैं। और ये भी सच है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तब आपको और उसके साथ इमोशन जोड़ने पड़ते हैं। जैसे अगर आपको किसी का नंबर याद करना है या फिर आप राशन लेने जा रहे हो और आप बार बार रिपीट कर रहे हो अपने दिमाग में कि ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है। जब इन्फॉर्मेशन इतनी सिंपल होती है तब आप उसे बार बार रिपीट करके अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। लेकिन जिस मोमेंट पर इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जब भी कोई आप ऐसी बुक को रीड कर रहे होते हो जिसमें बहुत मुश्किल इन्फॉर्मेशन होती है, तब आपका दिमाग बोलेगा कि भाई तेरे लिए इसका कोई मतलब ही नहीं है, तेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, तेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है इससे, तू कोई मीनिंग अटैच नहीं कर रहा इससे, तो मैं क्यों अपने अंदर इसको समाऊं। और यही चीज़ मैंने अपने कंटेंट के साथ नोटिस करी है कि जिस मोमेंट से मैंने अपने कंटेंट में अपनी स्टोरीज को ऐड करना शुरू करा उसी मोमेंट से मेरे पास ये कमेंट्स आने लगे कि आप उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा रिटेन कर पा रहे हो और आपके लिए अब वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रेलेवेंट है। थोड़े दिन पहले मैं एक अपने फेलो यूट्यूबर से बात कर रहा था और उनके मेरे से 5 से 6 गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो मेरे से यही पूछ रहे थे कि जैसे मैंने अपना फेस रिवील करा और अब मेरा कंटेंट इतना डिफरेंट बन चुका है पहले से, तो इस पर ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है। और मैंने उन्हें यही बोला कि ज़्यादातर ऑडियंस खुश है कि अब ये चैनल 1 of 1 बन चुका है और इसके जैसी इन्फॉर्मेशन दूसरे कहीं भी किसी भी चैनल पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो उन्होंने पूछा कि मेरे को कैसे पता कि ऑडियंस खुश है इस चीज़ से, और मैंने उनको यही एक सिंपल क्राइटेरिया बताया कि जब भी आपका इन्फॉर्मेशन जेनेरिक होती है, हर किसी चैनल पर सेम ही इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, तब ऐसे कमेंट्स आते हैं। पहले वो वाले कमेंट आते हैं, फर्स्ट वाले कमेंट आते हैं, उसके बाद कमेंट्स आते हैं कि यू चेंज माई लाइफ, आई लव योर कॉन्टेंट, उस टाइप के कमेंट्स आते हैं। लेकिन जिस मोमेंट पर आपका कंटेंट ऐसा बन जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली जोड़ रहा है सामने वाले को, तब कंटेंट्स का साइज़ बढ़ जाता है। लोग बस एक लाइन टाइप करके नहीं जाते हैं, वो उसको ज़्यादा समझ पाते हैं क्योंकि उसमें इमोशंस जुड़े हुए हैं और वो ज़्यादा याद रख पाते हैं। ये पावर होती है इमोशन की। यही वजह है कि क्यों बहुत से लोग जो स्कूल में फेल होते हैं वो आगे चलकर कोई बहुत बड़ी सक्सेसफुल कंपनी खोल लेते हैं या फिर वो किसी अच्छी जगह पर जॉब कर रहे होते हैं, और दूसरे लोग उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो पहले एक फेलियर था, अब ये ऐसा कैसे बन गया। लेकिन उसकी वजह यही होती है कि जहाँ कई स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास में पढ़ाया जा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, उनके लिए वो मीनिंगफुल होता है किसी भी वजह से। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा होता है वो उससे रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, वो बोलते हैं ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, मैं इससे इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पा रहा, और तभी वो वहाँ पर फेल होते हैं। और तभी ये भी पॉपुलर सेइंग होती है, वाई ए ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट्स, बिकॉज जो सी ग्रेड होते हैं, जो फेल होते हैं, फेल होने का मतलब डायरेक्टली यही नहीं हो जाता कि आप डम हो, फेल होने का मतलब ये भी हो सकता है कि मे भी जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में। थर्डली, अगर आप अटेंशन भी पे कर रहे हो और आप अपने इमोशंस को भी यूज़ कर रहे हो, तो जो चीज़ आपको चाहिए वो है रेस्ट। बिकॉज रिसर्च ये बताती है कि जब भी आप किसी चीज़ को रीड करके बस उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हो और खाली बैठ जाते हो, तब जो भी आपने रीड करा आपके दिमाग का मेमोरी वाला सेंटर उस सारी इन्फॉर्मेशन को दोबारा से प्रोसेस करता है ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन को सॉलिडिफाई कर सके। लेकिन सोचो अगर आप किसी चीज़ पर अटेंशन ही नहीं पे कर रहे और बस पैसिवली कंज्यूम कर रहे हो, बस पैसिवली कोई ऑडियो बुक सुन रहे हो या फिर पैसिवली इस तरह की वीडियो देख रहे हो, तो आपके दिमाग को पता ही नहीं होगा कि किस इन्फॉर्मेशन को उसे सॉलिडिफाई करना है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, स्पेस लर्निंग। जिस तरह से हमने एपिसोड के शुरुआत में भी बात करी कि अगर आपको लग रहा है कि आपने इतने दिनों से कोई बुक नहीं पढ़ी है, इतने दिनों से आपने कुछ लर्न नहीं किया है, तो आप आज ही सारा कोटा पूरा कर लोगे, आज ही आप 12-13 घंटे बैठ के एक स्ट्रेच में जितना मर्जी चाहो पढ़ पाओगे। लेकिन ये एक इनइफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इससे बेहतर ये होगा कि आप थोड़े थोड़े इंटरवल्स में पढ़ो, थोड़ा थोड़ा स्पेस रखो अपनी हर लर्निंग के बीच में। सोचो जिस इन्फॉर्मेशन को आप एक्वायर करना चाहते हो वो एक बाल्टी में भरा हुआ पानी है और आपका दिमाग एक टंकी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस टंकी की जो ओपनिंग है वो बस एक बोतल के छेद जितनी है, और अगर आप बाल्टी से बहुत ज़्यादा पानी डालने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा पानी फैल जाएगा और आप ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर यही होगा कि आप धीरे धीरे लर्न करो, आप कोई जल्दबाजी मत मचाओ। आपको बस ये अपने दिमाग में रखना है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना, और आपको ये नहीं सोचना है कि जस्ट बिकॉज आपने एक बार किसी चीज़ को पढ़ लिया है तो आपको वो याद हो गई है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम जब दोबारा से किसी मटेरियल को देखते हैं कि क्या हमें आता है नहीं आता, जब हम रिविजन कर रहे होते हैं तब हम सोचते हैं कि हाँ हाँ ये सारी चीज़ें, हाँ 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 ये सारा पता है, पता पता है। लेकिन किसी भी चीज़ को रिकग्नाइज करना डिफरेंट होता है उसे रिमेंबर करने से। आप देखकर बोल तो सकते हो कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे को पता हैं, लेकिन ये एक इल्यूजन देती हैं लर्निंग का। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो आपको कुछ भी याद करने से रोकती हैं। नंबर 1, नॉट एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। आपका लर्निंग प्रोसेस शुरू ही होता है अटेंशन देने से, और अगर आप कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड हो, अगर आपने घर में जाकर बोला नहीं है कि आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो या फिर आप काम करने बैठ रहे हो, तो ऑफकोर्स लोग आपके पास आएंगे, लोग खटपट करेंगे और लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हो। जितना ज़्यादा आप अपने आसपास से डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हो उतना ही आपका टाइम वैल्यूएबल बनता जाता है, और आप अपने 30 मिनट्स ऑफ फोकस्ड वर्क में ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हो और ज़्यादा चीज़ों को लर्न कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू 1 आवर ऑफ डिस्ट्रैक्टेड वर्क। इसलिए अगर आपको अपना फ़ोन नहीं चाहिए काम करते समय, फ़ोन को साइड रखो, अगर आपका भाई बहन आपको तंग कर रहा है उसकी शिकायत लगाओ और उसको पिटवाओ, कुछ भी ऐसा करो, चाहे कानों में ईयर प्लग्स डाल लो, कुछ भी ऐसा करो जिससे आप एक चीज़ पर अटेंशन पे कर सको। मिस्टेक नंबर 2, इंक्रीजिंग लर्निंग ड्यूरेशन इंस्टेड ऑफ लर्निंग एफिशिएंसी। जब भी हमें किसी चीज़ को याद करने में मुश्किल हो रही होती है तब हमारा पहला इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स यही होता है कि मैं और मेहनत करूँगा, मैं और इसको टाइम दूंगा, लेकिन ये चीज़ इफेक्टिव नहीं है। इससे बेहतर यही होगा कि आप ये फिगर आउट करो कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं है, क्या आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्या रीज़न है कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ नहीं रही है। फिगर आउट करो इस चीज़ को, बजाय बस खुद को खींचने के और खुद को घसीटने के, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू स्टडींग मोर इज नॉट ऑलवेज द राइट आंसर। मिस्टेक नंबर 3, मल्टीटास्किंग। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो तो एक एक्सरसाइज करते हैं, एक पेन ले लो, एक पेपर ले लो और जो मैं एक्सरसाइज बोलने वाला हूँ आपको उसके साथ अपना टाइम नोट करना है कि आपको कितनी देर लगती है उस एक्सरसाइज को पूरा करने में। आपको पहले ऊपर लिखना है आई कान डू मल्टीटास्किंग और फिर नीचे 1 to 20 काउंटिंग लिखनी है। पहले सेंटेंस लिखना है फिर काउंटिंग लिखनी है और देखो कि आपको कितनी देर लगती है, आप इसी समय ये कर सकते हो। और दूसरे ही बार आपको सिमिलर चीज़ करनी है ऐसी, आपको दूसरी साइड पर लिखना है एक एक करके, आई फिर 1, कैन का सी फिर 2। आपको बैक एंड फोर्थ जंप करना है सेंटेंस लिखने में और काउंटिंग लिखने में, और दोनों एक्सरसाइजेस को कंपेयर करो कि जब आपने एक एक करके लिखा तो कितनी देर लगी और जब आपने दोनों टास्क को मिलाने की कोशिश की, जब आपने मल्टीटास्क करने की कोशिश की फिर कितनी देर लगी। और आप ये क्लियरली देख पाओगे कि जब आपने एक समय पर पहले एक काम करा फिर आप दूसरे काम पर गए तब आपको 20-25 सेकंड लगे और जब आपने दोनों टास्क को मिलाने की कोशिश करी तब आपको 40-50 सेकंड लगे। इसलिए एक समय पर सिर्फ एक चीज़ को प्रायोरिटी दो और चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश मत करो। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा या फिर आपने इस लर्निंग फुल गाइड से कुछ नई चीज़ लर्न की तो कमेंट्स में बताओ।